आप सुन रहे हैं अमर उजाला आवाज।
ब्योमकेश बख्शी की कहानी, विपदा का संहार, अंतिम भाग। कहानी में अभी तक आपने सुना कि ब्योमकेश बख्शी सुकुमार बाबू की बेटी रेखा और बेटे हाबुल की हत्या की गुत्थी को सुलझा देता है। देवकुमार बाबू ही दोनों के कातिल निकलते हैं, लेकिन ब्योमकेश को कैसे पता चलता है कि कातिल सुकुमार बाबू हैं और उन्होंने ये कत्ल क्यों किए? सुनिए अब आगे। दो दिन तक ब्योमकेश ने इस केस की चर्चा नहीं की। उसके दिमाग की हालत समझ सकता था, इसलिए मैंने भी सिलसिले में कोई बात नहीं की। पर तीसरे दिन शाम को वो अपने आप ही बोलने लगा। अंग्रेजी में कहावत है, बदले की भावना घर आती है अड्डा जमाने के लिए, और यही देव कुमार बाबू के साथ हुआ। वो अपनी पत्नी की हत्या करना चाहते थे, लेकिन किस्मत देखिए, दो बार उन्होंने अपना निशाना बनाया तो दोनों बार अपनी बेटी और बेटे को खो बैठे, जो उन्हें अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारे थे। ये विधि का विधान ही था कि देव कुमार बाबू अनजाने में ही एक साधारण आविष्कार करने में सफल हो गए थे, जिसकी उन्होंने खुद कल्पना तक नहीं की थी। लेकिन आर्थिक साधन के अभाव में वो उसका उचित प्रयोग नहीं कर पाए। ऐसे आविष्कार का कॉपीराइट बुक करने के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाणिज्यिक मार्केट में इसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन युद्धोन्मुख देश जैसे जर्मनी, जापान और फ्रांस आदि को इस आविष्कार की अगर भनक भी पड़ जाए तो इस फॉर्मूले को लेकर अपनी प्रयोगशालाओं में शोध करके नरसंहार के हथियार बनाने में जुट जाएंगे, और आविष्कार करने वाले ना तो कुछ कर पाएंगे और ना ही उसे कोई लाभ हो पाएगा। इसलिए देव कुमार बाबू ने इसको अपने तक ही सीमित रखा था। इस जहर के विभिन्न प्रयोगों के लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान की जरूरत थी, और इसलिए उन्हें आर्थिक अनुदान चाहिए था। लेकिन आर्थिक सहायता का कोई प्रश्न नहीं था, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इसके प्रयोग पर शोध करने के लिए उन्हें अपनी प्रयोगशाला चाहिए थी, और इसके लिए पैसे का होना जरूरी था, और पैसे आते कहां से? इधर घर में उनका जीवन दुश्वार होता जा रहा था। उनकी पत्नी ने अपनी हरकतों से उनकी स्थिति को दयनीय बना दिया था। जो लोग मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, उन्हें घरेलू जीवन में अमन चैन की जरूरत होती है, लेकिन उनके जीवन में इसका नितांत अभाव था। उनकी पत्नी की तुनक मिजाजी, रूखापन और बात बात पर रोने पीटने के व्यवहार ने देव कुमार बाबू के जीवन को बेजार कर दिया था। स्वभाव से वो एक शांत पुरुष थे। एक शांतिपूर्ण जीवन में रहकर अपने वैज्ञानिक शोध में प्रगति करते रहने से अधिक उन्हें कोई और चाह नहीं थी। अपने बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखकर ये साफ हो जाता है कि वो अपने बच्चों का कितना ख्याल किया करते होंगे। उनकी दूसरी पत्नी ने अगर प्रयास किया होता तो वो भी उनके प्रेम की भागीदार बन सकती थी, लेकिन उसकी प्रकृति का गठन ही दूसरा था। नौबत यहां तक आ गई थी कि देव कुमार बाबू उसके चेहरे तक से नफरत करने लगे थे। हालांकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या तब तक नहीं करना चाहेगा जब तक कि उसका बर्दाश्त का पैमाना भर ना जाए। देव कुमार बाबू का पैमाना भी भर चुका था, और यही वो समय था जब ये घातक जहर उनके हाथ लग गया। उन्होंने दिमाग में सोचा, यही मौका है कि वो अपनी पत्नी से हमेशा के लिए छुट्टी पा जाए। उन्होंने भीतर ही भीतर अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया, और तब उन्होंने बीमा कंपनी का एक विज्ञापन देखा जिसमें कहा गया था, पति पत्नी संयुक्त रूप से जीवन का बीमा करा सकते हैं, और अगर दोनों में से कोई एक उस दौरान मर जाता है तो पूरी रकम दूसरे को मिल जाएगी। इसको पढ़कर उनके सभी प्रकार के संदेह दूर हो गए। ऐसा अवसर उन्हें फिर कहां मिलेगा? वे दोनों का संयुक्त बीमा करने के बाद अपने ही आविष्कार से उससे हमेशा के लिए छुट्टी पा लेंगे। एक तीर से दो निशाने, पैसा भी मिलेगा और उससे छुट्टी भी मिल जाएगी, और किसी को संदेह भी ना होगा। देव कुमार बाबू ने पहला काम जीवन बीमा करवाया और फिर अवसर की तलाश में समय गुजारने लगे। जल्दबाजी करने से बीमा कंपनी को संदेह का निमंत्रण देना था। इसी प्रकार एक साल बीत गया। आखिरकार उन्होंने क्रिसमस की छुट्टियों में अपने प्रोजेक्ट को अंजाम देने का फैसला किया। जो जहर उन्होंने आविष्कृत किया था उसमें विस्फोटक तत्व थे। जब तक इन तत्वों को नहीं छुड़ा जाता वो सामान ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही उनका संपर्क अग्नि से होगा उसके विस्फोटक तत्वों से जहरीली गैस निकलेगी, जिसे मात्र सूंघ लेने पर तत्काल मौत निश्चित है। अब देव कुमार बाबू ने अपनी योजना के कार्यान्वयन के लिए एक बहुत ही नायाब तरकीब निकाली। ऐसी तरकीब एक वैज्ञानिक के मस्तिष्क में ही पैदा हो सकती है। उन्होंने माचिस की कुछ तीलियों के मसालों पर इस जहर का लेप कर दिया। मैं नहीं कह सकता कि लेप चढ़ाने का तरीका उन्होंने क्या अपनाया होगा, लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि जो भी व्यक्ति उस तीली को माचिस पर रगड़ेगा तो गैस सूंघते ही तुरंत मर जाएगा। इन तीलियों को बना लेने के बाद देव कुमार बाबू ने दिल्ली में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस में जाने की तैयारी शुरू कर दी। धीरे धीरे जाने का दिन आ गया। उन्होंने प्रस्थान से पूर्व रेखा के कमरे में रखी माचिस की तीलियों में उस जहर की एक तीली को रख दिया और चले गए। उन्हें मालूम था कि उनकी पत्नी रोजाना लैंप जलाने के लिए माचिस जलाती है। इस माचिस का प्रयोग कहीं और नहीं होता। कल या कभी भी माचिस जलाने में वो तीली उसके हाथ लग ही जाएगी। उस समय देव कुमार बाबू बहुत दूर दिल्ली में होंगे। कोई शक भी नहीं कर पाएगा कि वो उनका काम हो सकता है। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रेखा चूल्हा जलाने गई, वहां उसे माचिस नहीं मिली। माँ के कमरे से माचिस लेकर गई। माचिस जलाने को हुई तो उसका हाथ उसी जहरीली तीली पर पड़ा और देव कुमार बाबू ने दिल्ली से लौटकर जब ये विभत्स घटना देखी तो उनके दिल में पत्नी के लिए नफरत की आग और भी तेज हो गई। वो गम में डूब गए। चूंकि उनकी बेटी मर चुकी थी, इसलिए अब उनकी पत्नी को मरना ही था। कुछ दिन और बीते, उन्होंने फिर एक जहरीली तीली को माचिस में रखा और पटना जाने को तैयार हो गए। लेकिन विपदा ने देव कुमार बाबू के जाने के पहले ही अपना तांडव दिखा दिया। हाबुल को सिगरेट पीने की आदत थी, उसकी माचिस संभवतः खाली हो गई थी, इसलिए उसने अपनी माँ की माचिस से कुछ तीलियां निकालकर अपनी माचिस में रखी और घूमने निकल गया। और फिर देव कुमार बाबू ने विज्ञान के महासमंदर में मंथन कर बड़े यत्न से जो रत्न पाया था, उन्हें लगा कि वो उनके जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होगी। उन्हें जरा भी संकेत ना मिला कि वास्तव में उनकी उपलब्धि इतनी जहरीली और विनाश में घातक साबित होगी। उनके द्वारा निर्मित जहर की चिंगारी उस सबको स्वाहा कर देगी जो उन्हें जीवन में सबसे प्यारा था। ब्योमकेश ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। कुछ क्षण मौन रहकर मैंने पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें कब शक हुआ कि देव कुमार बाबू ही अपराधी हैं? जिस समय मुझे ये पता लगा कि उन्होंने 50,000 रुपए की बीमा पॉलिसी ली है। उससे पहले तो ये भी नहीं सोचा था कि रेखा की हत्या के पीछे कोई उद्देश्य भी हो सकता है, क्योंकि उसकी हत्या से किसी को क्या फायदा होता था और किसी के मार्ग में वो कोई बाधा भी नहीं पहुंचा रही है। और ये भी सोच ना पाए कि रेखा हत्यारे का लक्ष्य क्यों हो सकती है। लेकिन एक बहुत ही छोटा सा सूत्र मुझे अन्यत्र मिल गया। जब रेखा के पोस्टमार्टम से कुछ तथ्य नहीं मिला तो मेरे सामने एक ही संभावना रह गई, और वो थी कि जिस जहर से रेखा की मौत हुई उसकी जानकारी अभी तक वैज्ञानिक जगत को नहीं हो पाई है, अर्थात ये कोई नया आविष्कार है। तुम्हें याद है देव कुमार बाबू का दिल्ली का भाषण? उस समय हम लोगों ने उसे एक असफल वैज्ञानिक का प्रलाप कहकर मजाक बनाया था। हमें क्या पता था कि वो एक कर्मठ वैज्ञानिक की विलक्षण खोज का संकेत है, क्योंकि उनके भाषण में आविष्कार से संबद्ध कुछ संकेतों का जिक्र भी शामिल था। जो भी हो, सवाल यह है कि यह आविष्कार किसके हाथों हुआ? दृश्य में दो ही वैज्ञानिक थे, पहले डॉक्टर रुद्रा और दूसरे देव कुमार बाबू। इसमें डॉक्टर रुद्रा चूंकि डॉक्टर थे इसलिए शक उन पर जाता है, क्योंकि किसी जहर के लिए उनकी पहुंच आसान थी। दूसरे आविष्कर्ता यदि देव कुमार बाबू हैं तो ये क्यों अपनी पुत्री को जहर देंगे? इसलिए शक डॉक्टर रुद्रा पर टिकता था। फिर भी मेरा मन इस धारणा पर स्थिर नहीं हो पा रहा था। डॉक्टर रुद्रा एक नीच व्यक्ति थे, किंतु क्या वे केवल इसलिए रेखा की हत्या कर सकते थे क्योंकि उनके लिए उनका बेटा उनसे विमुख हो गया था? और मान भी ले कि वो ये चाहते भी रहे हों, पर वे रेखा तक कैसे पहुंच सकते थे? वो किसी के घर में वो जहर कैसे ले जा सकते थे? रेखा और मन्मथ आपस में मिला करते थे, छत पर एक दूसरे को चिट्ठियां फेंका करते थे, लेकिन इसकी जानकारी डॉक्टर रुद्रा को कहां थी? दिमाग के किसी कोने में यही धारणा पल रही थी कि हत्या किसी जहरीली गैस से हुई है। जरा सोचो, रेखा के हाथ की उंगली में जली हुई तीली थी और दूसरी मुट्ठी में माचिस की डिबिया। इसका सीधा सा मतलब है कि मौत उसके माचिस जलाते ही हुई है। ये मात्र इत्तेफाक हो सकता है या फिर माचिस के घिसने और उसके बाद की घटना में कोई लिंक हो सकता है। देव कुमार बाबू ने भी बहुत सतर्कता बरती थी। उन्होंने मैच बॉक्स में केवल एक ही जहरीली तीली रखी थी, जिससे कि यदि शेष तीलियों की जांच की जाए तो कोई सबूत हाथ ना लगे। मैं जो माचिस लाया था उसमें मैंने अन्य तीलियों की जांच की तो कुछ मिला ही नहीं। हाबुल के केस में भी माचिस में केवल एक जहर की तीली थी, लेकिन भाग्य की क्रूरता देखो, पहली ही तीली को उठाया और वही जहर की निकली। अजीत, तुम लेखक हो, तुम्हें इसमें कुछ सीखने का कोई पाठ नहीं दिखाई देता? जिस दिन मनुष्य ने दूसरे के संहार के लिए जिन शस्त्रों का आविष्कार किया, उसी दिन उसने उन्हीं शस्त्रों द्वारा स्वयं के विनाश की इबारत भी लिख ली। जिस प्रकार दुनिया में चोरी छिपे जिन विनाशकारी शस्त्रों का आविष्कार किया जा रहा है, वही एक दिन पूरी मानव जाति का ही नाश कर देंगे, उस राक्षस की तरह जो ब्रह्मा की कल्पना से ही पैदा हो गया था, जैसे फ्रैंकस्टीन जो अपने ही जन्मदाता को खा गया। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? रात के अंधेरे में मैं ब्योमकेश को ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन यह जरूर लगा कि उसके विचार वास्तव में आने वाले कल के लिए भविष्यवाणी है।